नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सीपी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने दी शुभकामनाएं। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर प्रक्रिया हुई तेज, किसी भी समय हो सकती है अंतरिम सरकार के अध्यक्ष की घोषणा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव में सूचना तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर बल दिया, फेक न्यूज के प्रति किया सचेत। और मौसम विभाग ने कल किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, जमुई और नवादा जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई।
आई
चंद्रावरम पुन्नस्वामी राधाकृष्णन
डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस to the Constitution of India.
To the Constitution of India. Yes, by law established.
And that I will faithfully discharge the duty. Upon which I am about to enter.
शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी उपस्थित थे। शपथ ग्रहण के बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने सदैव अटल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि दी। सीपी राधाकृष्णन ने इस महीने की 9 तारीख को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। एक रिपोर्ट।
4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे श्री राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की है। आरएसएस स्वयंसेवक के रूप में शुरुआत करते हुए वे 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बने। श्री राधाकृष्णन 1998 और 1999 में कोयम्बतूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। संसद में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने वस्त्र के लिए संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2004 से 2007 के बीच श्री राधाकृष्णन ने तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2016 से 2020 तक उन्होंने कोची के कोयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। फरवरी 2023 में श्री राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने से पहले श्री राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी हैं। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि किसी भी समय अंतरिम सरकार के अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है।
राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, नेपाली सेना, जेएनसी प्रतिनिधियों और संवैधानिक विद्वानों के बीच वार्ता चालू है। आज से काठमांडू स्थित न्यू बस पार्क से फंसे हुए यात्री अपने गंतव्य स्थानों तक जा सकते हैं। वहीं नेपाल इंश्योरेंस अथॉरिटी ने सभी इंश्योरेंस कंपनीज को निर्देश दिया है कि 8 सितंबर के बाद हुई दुर्घटनाओं में आ रहे इंश्योरेंस क्लेम्स को आसानी से निपटाएं। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनावी प्रक्रियाओं के संबंध में आम लोगों तक सूचनात्मक और तथ्यात्मक खबर पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कुमार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों के मीडिया और संचार अधिकारियों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सूचना तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की जरूरत है। श्री कुमार ने मीडिया मीडिया और संचार अधिकारियों से आम लोगों को फेक न्यूज के प्रति सचेत करने के लिए हर संभव कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दीपावली तक अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री का यह सपना 3 सितंबर को साकार हुआ जब जीएसटी परिषद ने नागरिकों का जीवन सरल बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर की दरें कम करने को मंजूरी दी। आज हम कर मुक्त वस्तुओं पर नजर डालते हैं। एक रिपोर्ट।
जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कई आवश्यक वस्तुओं को कर मुक्त कर आम आदमी पर पड़ने वाले जीएसटी के बोझ को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नए कर ढांचे के तहत रोजमर्रा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं जैसे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, बिना ब्रांड वाले चावल, गेहूं और दालों को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा सभी प्रकार के ब्रेड को भी नील जीएसटी स्लैब में रखा गया है, जिससे वह लोगों के लिए और भी अधिक किफायती हो गई है। लोगों पर कर के बोझ को कम करने और प्रीमियम को अधिक किफायती बनाने के लिए नए ढांचे के तहत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को भी टैक्स से मुक्त किया गया है। यह निर्णय लोगों को स्वास्थ्य बीमा को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। देश भर के लोगों द्वारा भी सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में एक आम नागरिक निमिष जैन ने कहा कि सरकार ने त्योहारों के सीजन से पहले टैक्स घटाकर लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। नए जीएसटी दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। श्री चौधरी ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एनडीए और भाजपा को पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में एनडीए जनता के बीच विकास के मुद्दों को लेकर जाएगी।
नीतीश कुमार जी पर एक भरोसा किया है बीजेपी ने, हम साथ मिलकर फिर जीतेंगे। सिर्फ विकास विकास और विकास और विकास बनाम विनाश, इस एजेंडे पे हम जाएंगे। एक तरफ नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी है और दूसरे तरफ लालू प्रसाद जी के साथ कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी। हम बताएंगे जनता के बीच में कि नीतीश कुमार जी ने अपने 4 टर्म में बिहार के विकास के लिए काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने 40 वर्षों तक बिहार को लूटा।
एनडीए के घटक दलों ने बिहार कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए उस एआई जनरेटेड वीडियो की कड़ी आलोचना की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे दिखने वाले दो किरदारों को दिखाया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कांग्रेस ने आपत्तिजनक वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री और उनकी मां को एक बार फिर अपमानित किया है।
घुसपैठिया बचाओ यात्रा में भी इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली देकर उनको अपमानित किया। राहुल और तेजस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी माता जी को अपमानित करने का गाड़ी गलौज करने का काम कर रहे हैं। देश की जनता ने तो इनको सुधार दिया है, बिहार की जनता ने तो इनको सुधार दिया है, तब भी यह सुधर नहीं रहे हैं। फिर 2025 में बिहार में सुपड़ा साफ कर आरजेडी और कांग्रेस को पूरी तरह से साफ करने का काम बिहार की जनता करेगी।
इधर जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह वीडियो कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों की हताशा को दर्शाता है।
कोई मजाक उड़ाना, गाली देना, ये सब इन लोगों के लिए आम बात हो गई है और यह सब एक ही चीज का द्योतक है कि शायद हमारे विपक्षी दलों में हताशा और निराशा कुछ ज्यादा ही व्याप्त होने लगी।
भागलपुर में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से युवा शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजद और कांग्रेस अपनी संभावित हार को देखते हुए बौखला गई है और अनर्गल बयानबाजी कर रही है।
राजनीति का स्तर कितना हल्का हो सकता है ये आरजेडी, राजद और कांग्रेस ने बता दिया कि कीचड़ उछालना और किसी की मां पर तंज कसना, और वो भी जिनका स्वर्गवास हो चुका हो। वो जब बिहार की धरती से होता है तो बिहार की जनता भी जानती है कि अभद्र भाषा बोलने वाले, मां को गाली निकालने वालों का रिश्ता राजद और कांग्रेस से ही हो सकता है। लेकिन राजद और कांग्रेस के नेताओं को मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जब इस धरती से प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली जब कोई निकालता है तो बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब गालीबाज कांग्रेस और राजद को देगी।
केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज बेगूसराय में एक निजी कंपनी के कपड़ा फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा इस फैक्ट्री की स्थापना से 1000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
ये आदित्य बिरला ग्रुप को देखते हुए अन इंडस्ट्री भी इसके कारण आई। ये शुरुआत है टेक्सटाइल के बड़े हब होने का। ये महज 1000-2000 महिलाओं को रोजगार का विषय नहीं है। आज यहाँ गुलजार हो रहा है, नए इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना हो रही है, आज चमचमाता हुआ एक सड़कें बन रही, फ्लाई ओवर बन रहा, रिफाइनरी फर्टिलाइजर खुल, एक माहौल क्रिएट।
प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिले के तैयबपुर में सबसे अधिक 68.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने कल किशनगंज और अररिया जिले में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पूर्णिया, सुपौल, जमुई और नवादा जिले के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।
दिनांक 13 सितंबर 2025 को उत्तर मध्य एवं पूर्व भागों के अनेक स्थानों जबकि शेष भागों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। राज्य के किशनगंज और अररिया जिलों के 1 या 2 स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के पूर्णिया, सुपौल, जमुई एवं नवादा जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
सुपौल से पुणे के बीच सीधी रेल सेवा शुरू हो गई है। स्थानीय सांसद दिलेश्वर कामित ने आज सुपौल पुणे एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि यह गाड़ी नियमित रूप से सुपौल से रवाना होकर दानापुर होते हुए पुणे तक जाएगी। श्री कामित ने कहा कि बहुत जल्द सुपौल को एक अमृत भारत ट्रेन मिलने वाली है। मधुबनी जिले में एसएसबी और पुलिस की टीम ने मधवापुर पंचायत के रामपुर वृत्त गांव से एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। वह नेपाल के जलेश्वर जेल से फरार हो गया था। मधुबनी से कल भी 2 नेपाली कैदियों को गिरफ्तार किया गया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीपी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने दी शुभकामनाएं। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर प्रक्रिया हुई तेज, किसी भी समय हो सकती है अंतरिम सरकार के अध्यक्ष की घोषणा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव में सूचना तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर बल दिया, फेक न्यूज के प्रति किया सचेत। और मौसम विभाग ने कल किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, जमुई और नवादा जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।